सागरीय जल से ऊर्जा, सूर्य की किरणों से ही सागर को प्रकाशमान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरणों में 50% इंफ्रारेड, 41% दृश्य प्रकाश तथा 9% अल्ट्रावायलेट एक्सरे तथा गामा किरणें होती हैं। सौर प्रकाश वातावरण तथा सागर में वर्तमान वायु तथा जल के परमाणुओं को प्रकाशित करता है। वायु में वर्तमान परमाणु इंफ्रारेड किरणों को बहुत कम सोखते हैं, जबकि जलीय परमाणु बहुत अधिक। अल्ट्रावायलेट किरणों का वायु परमाणु बहुत अधिक शोषण करते हैं, जबकि वायु व जलीय परमाणु नीली व हरी किरणों का बहुत कम शोषण करते हैं। इंफ्रारेड किरणें वातावरण को आसानी से पार करती हैं, परंतु जल द्वारा सोख ली जाती हैं, परिणाम स्वरूप सौर ताप भी। सागरीय जल इंफ्रारेड किरणों का इतनी तीव्रता से शोषण करता है कि यह जल में लगभग 1 मीटर की गहराई से नीचे नहीं पहुंच पाता। फलतः सौर ऊष्मा महासागरों में केवल कुछ मीटर तक ही प्रवेश कर पाती है और गहराई तक ऊर्ध्वाधर मिश्रण तथा जल संचरण द्वारा ही पहुंच पाती है। सागरीय जल में नीली व हरी किरणों का शोषण बहुत कम होता है। वैसे यह पौधों में फोटोसिंथेसिस अथवा संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त होती है तथा यही सागर के नीले हरे रंग के लिए उत्तरदायी भी होती है। पृथ्वी पर आने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा का आकलन किया गया है। इस ऊर्जा का कुछ भाग गतिक, स्थैतिक तथा उष्ण सागरीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर सागरों में बहता है। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, धाराएं ऊष्मा का परिवहन उच्च अक्षांशों की ओर करती हैं, जिससे निम्न अक्षांशों में महासागर आवश्यकता से अधिक उष्ण नहीं होने पाता तथा उच्च अक्षांश आवश्यकता से अधिक शीत नहीं होने पाते। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक ऊष्मा स्थानांतरित होती है। सागर में शोषित ऊष्मा का कुछ भाग सागरीय जल के वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है। वाष्पीकरण द्वारा लगभग 4×10^16 वाट निहित ऊष्मा खर्च होती है। सागरीय धाराएं धरातलीय ऊष्मा तथा वायु परिवहन शक्ति के संयोग से उत्पन्न होती हैं। सागरीय धाराएं विशाल मात्रा में गतिशील ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अध्याय 3 में वर्णित हिंद महासागर की धाराओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन की दिशा में खोज तथा प्रयास अभी भविष्य के गर्भ में है। सागरीय धाराओं के अतिरिक्त सागरीय ऊर्जा का दूसरा स्रोत सूर्य तथा चंद्र के आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न ज्वार भाटा है। ज्वारीय शक्ति, जैसा कि छिछले सागरों में घर्षण से उत्पन्न होती है, अनुमानों के अनुसार विश्व में पूर्ण निहित ज्वारीय शक्ति 10^12 वाट है। विश्व के सभी विद्युत शक्ति स्टेशनों की क्षमता 10^13 वाट आंकी गई है, जबकि भूमंडल में सभी मानवों की ऊर्जा खपत क्षमता 10^12 वाट है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सागरीय जल से ऊर्जा उत्पन्न करना अल्पव्ययी कार्य होगा, क्योंकि पेट्रोलियम में निहित शक्ति के घनत्व से सागरों में निहित शक्ति का वास्तविक घनत्व बहुत कम होता है। अर्थात 1 ग्राम पेट्रोलियम में 10 कैलोरी की शक्ति निहित है। इतनी ही शक्ति प्राप्त करने के लिए 1 ग्राम जल को 1 मिलीग्राम प्रति सेकेंड पर 10 दिनों की आवश्यकता होती है। सागरीय जल से ऊर्जा उत्पन्न करने के परिणाम स्वरूप दूसरी समस्या यह होगी कि ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम तो सागरीय जल का ऊपरी सतह अधिक गर्म होगा, जिससे हिमखंड पिघलकर विश्व के सागरीय जल स्तर में वृद्धि कर देगा। फलस्वरूप बहुत से द्वीप मग्न तट डूबकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तत्पश्चात सागरीय ऊष्मा के शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाने से विश्व के सागर का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर हिमयुग की पुनरावृत्ति कर देगा। इस प्रकार इन परिणामों पर विचार करके ही विशाल व अक्षय सागरीय जल से स्वच्छ तथा वातावरण प्रदूषण विहीन ऊर्जा का उत्पादन समीचीन होगा। समुद्री बीच मैरीन बीचेस, महासागरों में खनन के दृष्टिकोण से सागरीय बीच अत्यंत रुचिकर प्रदेश हैं। सागरीय फेनिल तरंगों के रगड़न संदलन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एवं केंद्रीकरण क्रियाओं के कारण खनिजों का बहुत सा प्रक्रमण प्रकृति द्वारा होता है। इस क्षेत्र में खनन एवं प्रक्रमण क्रियाएं सामान्यतया सरल एवं सस्ती होती हैं। सागरीय बीचों में व्यापारिक दृष्टिकोण से निकाले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज हीरा सोना मैग्नेटाइट कोलंबाइट इल्मेनाइट जिरकन सीलाइट मोनाजाइट प्लैटिनम एवं सिलिका हैं। बहुत से पुराने बीचों पर जो उत्थित तट रेखा पर अब सागर तल से ऊपर आ गए हैं, इस समय मुख्यतया जिरकन मैग्नेटाइट टिटेनियम सोना या हीरा के लिए शोध किया जा रहा है। उत्थित एवं उत्थानशील बीचों के अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्रों में बहुत से निमग्न बीच प्लिस्टोसेन समय के हैं, जबकि महाद्वीपीय ग्लेशियरों में जल के जमाव के कारण सागर तल का स्तर नीचे था। यह आशा की जा सकती है कि अपतटीय क्षेत्रों के निमग्न बीचों पर उन्हीं खनिजों के प्लेसर निक्षेप पाए जा सकते हैं जो समीपवर्ती वर्तमान बीचों पर उपलब्ध हैं। तटीय बीचों वाले उन्हीं खनिजों की अपतटीय क्षेत्रों में प्राप्ति के परिणाम प्रमाण जापान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मैग्नेटाइट, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में हीरों की तथा मोम, अलास्का में सोने की उपलब्धि है। हिमयुग में सागर के विभिन्न स्तरों सतहों पर काफ़ी समय तक स्थिर रहने से यह आशा की जा सकती है कि अपतटीय क्षेत्रों में बहुत से बीच बने होंगे। इस प्रकार अपतटीय क्षेत्रों का संभावित खनिज उत्पादन अभी तटीय उत्पादन से अधिक होना चाहिए। महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स, विश्व के महाद्वीपीय मग्न तटों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर या सागरीय जल से ऊपर स्थित महाद्वीपों के संपूर्ण क्षेत्र का 20% आता है। महाद्वीपीय मग्न तटों की चट्टाने महाद्वीपों के ही समान होने से यह आशा की जाती है कि इन चट्टानों का संभावित खनिज उत्पादन सागरीय जल से ऊपर स्थित महाद्वीपीय चट्टानों की 20% होंगी। खनिज तेल तथा गंधक को छोड़कर उन्नत तकनीक के विकास बिना महाद्वीपीय मग्न तटों से खनिजों का खान लाभकारी नहीं हो सकता। फिर भी इनमें कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो वर्तमान तकनीकी से मितव्ययिता से निकाले जा सकते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के असंबद्ध अवसादों में रेत बजरी सीप घोंघे टिन हीरा तथा भारी खनिजों से युक्त रेत का ही आर्थिक महत्व है, जिसके पंख निष्कासन ड्रेडजिंग द्वारा निकालते हैं। यह कार्य तट के समीप के जल में केवल 235 फीट की गहराई तक हो पाया है। महाद्वीपीय मग्न तटों के गहरे जल में ढालों अंतः समुद्री बैंकों तथा कटकों के ऊपरी भाग में 100 से 1000 फीट की गहराई पर फास्फोराइट पिंडों का निर्माण प्राचीन अथवा नवीन जैविक उत्पादकता के कारण होता है तथा इनका निक्षेप लगभग सर्वत्र पाया जाता है। फास्फेट विहीन क्षेत्रों को छोड़कर खाद तथा अन्य उत्पादनों के लिए फास्फेट की मांग की आपूर्ति भूमि पर पाए जाने वाले स्रोतों से ही हो जा रही है, अतः निकट भविष्य में इस संसाधन के समुद्री शोषण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। कैल्केरियस निक्षेप अपतटीय निक्षेपों में कैल्केरियस कवच सेल्स का बड़ा महत्व है। इनका उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल की तरह होता है। आइसलैंड तथा मैक्सिको की खाड़ी में टेक्सास से फ्लोरिडा तक विभिन्न स्थानों पर सुक्तियाँ निकाली जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में इन पर आधारित कई सीमेंट के कारखाने भी स्थित हैं। ग्लूकोनाइट विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला तत्रजन खनिज है। सागर नितलीय ग्लूकोनाइट में 4-9% K2O होता है, जो कृषियोपयोगी खाद तैयार करने में पोटेशियम का स्रोत होता है। अक्सर यह निक्षेप में अन्य वस्तुओं में मिश्रित न होकर अलग पाया जाता है। फास्फोराइट विश्व के बहुत से देशों में अपतटीय क्षेत्रों के मग्न तटों पर फास्फोराइट के निक्षेप पाए जाते हैं। हिंद महासागर में यह दक्षिण अफ्रीका के अपतटीय क्षेत्रों तथा हिंद महासागर के बहुत से द्वीपों के निमग्न भागों में पाया जाता है। सागरीय नीतल पर पेंडों के रूप में मोटे कणों वाले अवसादों के ऊपर इसकी एक पतली परत पाई जाती है। शुष्क भार के आधार पर फास्फोराइट पिंडों में P2O5 30% पाया जाता है। निमज्जित नदी घाटी ड्रॉन्ट रिवर वैली मलेशिया थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में अभी तटों में से वर्तमान सागर तल तक के नदी प्लेसरों से टिन निकाला जाता है। स्पष्टतया ये निक्षेप अपतटीय भागों तक पाए जा सकते हैं। इस समय इंडोनेशिया के अपतटीय क्षेत्र में लगभग 10 वेधक कार्यरत हैं। ऐसे निक्षेप अब नवीन भूकंप पूर्वेक्षण उपाय द्वारा, जिससे अवसादों से पूर्णतया आवृत होते हुए भी सागर नितलीय घाटियों तथा समीपवर्ती कटकों का शीघ्र निरूपण संभव है, अधिकाधिक मिलने लगे हैं। निमज्जित घाटियों में पर्याप्त मात्रा में प्लेसर निक्षेपों के रूप में सोना, नोम, अलास्का के अपतटीय भाग में प्लैटिनम, गुड न्यूज खाड़ी अलास्का में तथा हीरा दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में ऑरेंज नदी के मुहाने के अपतटीय भाग में पाया जाता है। गहन सागरीय नीतल डीप सी फ्लोर जल में लगभग सर्वत्र समान वितरित खनिजों के विपरीत सागर नितल पर पाए जाने वाले खनिजों का चट्टानों तथा निक्षेपों के अंदर अथवा ऊपर कहीं छिटपुट तक तथा कहीं सघन केंद्रीकरण हुआ है। ये हैं सागर नितलीय निक्षेपों में पाए जाने वाले खनिज: बालू, बजरी, क्वार्ट्ज, मैग्नीज, पिंड, फास्फोराइट आदि। इनका आर्थिक शोषण तटरेखा से 70 मील के अंदर 350 फीट की गहराई तक ही किया गया है। मैग्नीज पिंड सागरीय सतह पर पाए जाने वाले खनिज मैग्नीज या लौह मैग्नीज या बहुधात्विक पिंड का भावी आर्थिक महत्व अत्यधिक है। ये गहरे सागर में जहां अवसादन अति धीरे होता है वहीं पाए जाते हैं। सामान्यतया ये भूखंडों से दूर 4-5 किलोमीटर की गहराई पर, जहां तलीय जल कार्बोनेट में परिवर्तित होने वाला हो, पाए जाते हैं। इनका निर्माण मैग्नीज और लोहे के ऑक्साइड तथा अन्य सागरीय खनिज बहुत धीमी गति से तलछट के रूप में समुद्र तल की ओर जाते हैं और किसी प्रस्तर खंड, डूबे हुए जलयान के लौह टुकड़ों, बम के खोखला अथवा खोल अथवा शार्क मछली के दांतों के नाभिक के चारों ओर अवक्षेपण द्वारा पर्त दर पर्त जमने से होता है। लाल मृत्तिका तथा सिलिका युक्त ऊर्जा वाले अवसादों के मध्य इनका निक्षेपण होता है। इनका आकार आलू की तरह गोल, अंडाकार या बहुभुजी हो सकता है। इनका रंग काला या गहरा भूरा, अधिकतर 8.3 सेंटीमीटर लंबा तथा 200 ग्राम तक भारी होता है। इन्हें 3.5-6 किलोमीटर की गहराई से निकाला जाता है। समुद्र तल में इनकी मात्रा 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर तक पाई जाती है, जबकि 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक की मात्रा ही समुद्री खनन की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। मैग्नीज पिंडों का केंद्रीकरण उन दूरस्थ एकांत स्थित क्षेत्रों में अधिक होता है जहां अवसादीकरण की गति अत्यंत धीमी हो। 1960 में लगाए गए अनुमान के अनुसार विश्व के तीनों महासागरों में संपूर्ण मैग्नीज पिंड 0.9 तथा 20×11^11 टन आंका गया है, परंतु 1979 में गहन सर्वेक्षण के उपरांत संचित राशि इससे कम आंकी गई। विवरण की दृष्टि से अटलांटिक तथा हिंद महासागरों की अपेक्षा प्रशांत में इनका बाहुल्य पाया जाता है। हिंद महासागर में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में, जहां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियां तीव्र गति से अवसादीकरण के पदार्थ जमा करती हैं, पिंडों की उपस्थिति बहुत कठिन है। एकांत स्थित 90 डिग्री पूर्वी कटक के दोनों ओर इनका जमाव बहुतायत में हुआ है। कटक के पश्चिमी ओर के मैग्नीज पिंड मैग्नीज, निकल तथा जिंक तत्वों में अत्यंत संपन्न है, जबकि कटक के पूर्व की ओर मैग्नीज, कैल्शियम तथा नियॉन निकल का जमाव मध्यवर्ती भाग में हुआ है। मध्यवर्ती हिंद महासागरीय बेसिन, हार्टन बेसिन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन, सेसल्स प्रदेश तथा अगुलहास बेसिन, इसके अतिरिक्त 1 कोटि के मैग्नीज अयस्क के क्षेत्रों का वर्गीकरण भी किया गया है। उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क का क्षेत्र मुख्यतया 2 प्रदेशों में केंद्रित है। पहला दक्षिणी मध्यवर्ती बेसिन 10 से 25 डिग्री दक्षिण तथा 70 से 85 डिग्री पूर्व तथा दूसरा दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन। इन क्षेत्रों में कम से कम 10% से लेकर 26-50% स्टेशनों ने मैग्नीज पिंडों की उपस्थिति बताई। इस दृष्टि से यह क्षेत्र संपन्न नहीं कहा जा सकता, परंतु हिंद महासागरीय बेसिन की उच्चावचीय जटिलता तथा इनके अपर्याप्त शोध के कारण इनकी प्रादेशिक भिन्नता पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता। पेट्रोलियम घुलनशील द्रव्य खनिजों पेट्रोलियम गैस गंधक तथा पोटास में मूल्य की दृष्टि से पेट्रोलियम तथा गैस से सागर से प्राप्त खनिजों का 90% प्राप्त होता है तथा भविष्य में इसके और बढ़ते रहने की संभावना है। रूस तथा चीन को छोड़कर शेष देशों में 1968 में सागर तट के दूर के सागरीय स्रोतों से 17% पेट्रोलियम तथा 6% प्राकृतिक गैस निकाली गई है। 1978 में पेट्रोलियम उत्पादन का 22% था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रूच तूफानी हिममंडित सागर के शोषण से यह प्रतिशत भविष्य में और बढ़ सकता है। यद्यपि अपतटीय क्षेत्रों से पेट्रोलियम सन 1890 से ही निकाला जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अपतटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम हेतु विशाल पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में अपतटीय कूपों से लगभग 250 मिलियन बैरल खनिज तेल प्रतिवर्ष तथा शेष विश्व से 250 मिलियन बैरल प्रतिवर्ष पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, जिसका 75% अकेले फारस की खाड़ी प्रदान करता है। अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन की दर बढ़ती जा रही है। WE Pratt का अनुमान है कि महाद्वीपीय मग्न तटों में 1000 बिलियन बैरल खनिज तेल का भंडार सुरक्षित है, जो कि महासागरीय क्षेत्र के अनुमान के लगभग बराबर है। सागर तली के खनिजों का खाने खोदकर शोषण खनिजों के मूल्य से अधिक हो जाने से आर्थिक दृष्टि से अल्पव्ययी नहीं होता, इसलिए सागरीय खनिजों का शोषण बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। तट के समीपस्थ सागरीय क्षेत्रों से कुछ कोयला तथा लोहा, विशेषकर पेट्रोलियम तथा गैस का शोषण इसके अपवाद हैं। 1920 में सर्वप्रथम कैस्पियन सागर के बाकू क्षेत्र से तथा 1938 में मैक्सिको की खाड़ी के लुइसियाना क्षेत्र से पेट्रोलियम के शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1945 के बाद से तो मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, नाइजीरिया के तटों से दूर सागर में विशाल मात्रा में पेट्रोलियम उत्पन्न करने वाले कुंपों का विकास हुआ। हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों द्वारा भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में खनिज तेल की अच्छी संभावना व्यक्त की गई है। 1980 में बॉम्बे हाई क्षेत्र के कूपों से 80,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों से दूर मग्नतट पर पेट्रोलियम का पता चला है तथा कुछ में उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। इस समय विश्व के सभी देश महाद्वीपीय मग्न तटों से या तो पेट्रोलियम निकालते हैं या इस दिशा में सर्वेक्षण बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। सबसे गहरा पेट्रोलियम कूप 312 मीटर मिसिसिपी के मुहाने पर 25 किलोमीटर दक्षिण स्थित है। इससे ड्रिल तथा पंप करके पेट्रोलियम निकालने के लिए 46,000 टन के 385 मीटर ऊंचे इस्पात निर्मित संरचना की आवश्यकता पड़ती है। आर्चर 1973 के अनुसार 1968 में सागरीय क्षेत्र से निकाले गए खनिजों का मूल्य मात्र $170 मिलियन था, जबकि उसी क्षेत्र से निकाले गए पेट्रोलियम का मूल्य 6,000 मिलियन तथा गैस का मूल्य $275 मिलियन था। अब तक पाए गए सागरीय क्षेत्र के सभी तेल कूप महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही स्थित हैं। इनकी भौगर्भिक संरचना समीपवर्ती भूभागों के समान ही होती है। दुर्भाग्यवश दक्षिणी गोलार्ध के मग्न तट उत्तरी गोलार्ध के मग्न तटों की अपेक्षा बहुत कम है। भूगर्भशास्त्रियों ने सागरीय क्षेत्र के गहरे जल में पेट्रोलियम की संभावनाओं पर भी विचार किया है तथा यह पाया है कि लगभग 80% क्षेत्र में पेट्रोलियम की संभावना नगण्य है, क्योंकि जो परिस्थितियां पेट्रोलियम के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती हैं वे इन क्षेत्रों में अनुपस्थित हैं। पेट्रोलियम के निर्माण के लिए 1 से 2 किलोमीटर मोटाई के सागरीय तथा भूमिज जीवों के अवसाद की आवश्यकता होती है, जो 50 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर द्रव पेट्रोलियम में परिवर्तित होती है। सागर के गहरे जल में सागर तली के विस्तरण सिद्धांत के अनुसार कटकों के चारों ओर जमा अवसादों की मोटाई पेट्रोलियम निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंद महासागरीय परिमंडल में पेट्रोलियम उत्पादन। क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन में विश्व में 1970 से 81 के दशक में कुल 51.4 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, जिसमें सर्वाधिक योगदान सोवियत संघ, यूरोप, उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया का रहा है। सोवियत संघ, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया का उत्पादन 1970 से निरंतर वृद्धि पर है तथा दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका का उत्पादन घटता पाया गया है। 1960 के बाद से विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन में एशिया सर्वप्रथम रहा है। 1979 में इसने अब तक का सर्वाधिक 12,794.9 लाख टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया, जो विश्व के संपूर्ण उत्पादन का लगभग 41% था। 1981 में उत्पादन तथा प्रतिशत दोनों गिरकर क्रमशः 9,990 लाख टन तथा लगभग 36% हो गया। अफ्रीका का विश्व में प्रतिशत तो 1970 के बाद से घटना शुरू हो गया था, क्योंकि अन्य महाद्वीपों के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई, परंतु संपूर्ण उत्पादन 1979 में एशिया की भांति चरम सीमा पर पहुंचकर 323 लाख टन ही गिरना प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिशत व संपूर्ण उत्पादन 1970 से बढ़ ही रहा है। ये तीनों ही महाद्वीप एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागरीय परिमंडल से संबंधित हैं। एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादन में 17 हिंद महासागरीय राज्यों का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। हिंद महासागरीय राज्यों ने तीनों महाद्वीपों में तथा विश्व में 1970 में क्रमशः 93% तथा 33%, 1979 में 91% तथा 39% तथा 1981 में लगभग 90% तथा 33.5% पेट्रोलियम उत्पन्न किया। 1979 में इन राज्यों ने विश्व के अन्य बहुत से देशों की तरह 12,150 लाख टन पेट्रोलियम का रिकॉर्ड उत्पादन किया। संप्रति इसके भाग में कमी के लिए हिंद महासागरीय राज्यों के अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के अन्य देशों में तथा सागरीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि को उत्तरदायी माना जा सकता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया हिंद महासागर या एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादक है। 1981 में दक्षिणी पश्चिमी एशिया के 9 देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कुवैत, इराक, कतार, सऊदी अरब, ओमान तथा बहरीन ने सम्मिलित रूप से हिंद महासागरीय परिमंडल का 82.7%, एशिया का 77.33% तथा विश्व का लगभग 30% क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन किया। पेट्रोलियम की उपलब्धि के कारण ही विश्व के ये शुष्कतम रेतीले मरुप्रदेशीय भाग विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश हैं। यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर विश्व में प्रति व्यक्ति उच्चतम आय से प्रकट होता है। 1979 में संयुक्त अरब अमीरात में प्रति व्यक्ति आय 23,410, कुवैत में 20,520, कतार में 20,020, सऊदी अरब में 9,960, बहरीन 5,150, ओमान 3,530, इराक 2,710 तथा ईरान 2,060 डॉलर थीं। इसमें प्रथम तीन संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत तथा कतार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व में प्रथम तीन स्थान पर हैं। इनकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की आय क्रमशः 10,610 तथा 8,870 डॉलर हैं। हिंद महासागरीय परिमंडल के अन्य राज्यों की आय दी गई है। पेट्रोलियम की संचित राशि के दृष्टिकोण से भी हिंद महासागरीय राज्य विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1978 में विश्व के कुल ज्ञात भंडार में से 16 प्रमुख हिंद महासागरीय राज्यों के अंतर्गत 52,04,483 लाख टन पेट्रोलियम का पता चला है, जो कि विश्व का 67.5% है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देशों सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतार, ओमान तथा बहरीन के पास क्रमशः अधिकतम से निम्नतम संचित राशि के भंडार हैं। विश्व में इनका सम्मिलित भाग लगभग 64% है। वास्तव में पश्चिमी एशिया में कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी से घिरा हुआ भाग पेट्रोलियम की संचित राशि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तरी भाग सोवियत संघ के अंतर्गत तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। इनके अतिरिक्त संचित राशि के दृष्टिकोण से हिंद महासागरीय राज्य के देश क्रमशः इंडोनेशिया, मिस्र, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बर्मा तथा थाईलैंड आते हैं। इन देशों में खनिज तेल के छोटे छोटे भंडार हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से संयुक्त अरब का हिंद महासागरीय राज्यों तथा एशिया में 1979 के बाद से प्रथम स्थान हो गया है। 1970 में यह ईरान के बाद दूसरे स्थान पर था। 1981 में इसने 4.91 अरब टन क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन किया, जो अब तक के उत्पादन में सर्वाधिक है। विश्व के उत्पादन में अकेले सऊदी अरब का भाग 19% था तथा एशिया में आधे से थोड़ा ही कम है। यहाँ की प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र धाहरन, दमान, अबाकिक, आइनेदार, कातिफ व घावर हैं। यहाँ के पेट्रोलियम को रास तनूरा रिफाइनरी में शोध कर भूमध्य सागरीय तट पर स्थित लेबनान के बंदरगाह सिदोन को 1,700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा भेज दिया जाता है। हिंद महासागरीय राज्यों में इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर आता है। इसका प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक द्वीप सुमात्रा है। इसके अतिरिक्त बोर्नियो, सारावाक तथा जावा भी उत्पादन में प्रमुख सहायक हैं। सुमात्रा में पैलेम्बांग, मैदान व जाम्बी, बोर्नियो में बालिक, पापन व तराकान तथा जावा में रेम्बांग व सुराबाया प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। सुमात्रा में मैदान व साबाक तेल शोधक केंद्र हैं। इंडोनेशिया 1970 में ईरान, सऊदी अरब, कुवैत तथा इराक के बाद पांचवें स्थान पर था। 1979 में इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद यह छठवें स्थान पर आ गया। 1981 में इसका वार्षिक उत्पादन लगभग स्थिर 7.87 करोड़ टन रहा, पर यह द्वितीय स्थान पर आ गया। इसका कारण सऊदी अरब के अतिरिक्त अन्य देशों के उत्पादन में गिरावट थी। संयुक्त अरब अमीरात हिंद महासागरीय राज्यों में 1970 में छठें स्थान पर से 1979 में पांचवें स्थान पर तथा 1981 में तीसरे स्थान पर आ गया। इसका वार्षिक उत्पादन 1970 में 3.7 करोड़ टन से बढ़कर 1979 में 8.98 करोड़ टन, पुनः 1981 में कम होकर 7.29 करोड़ टन हो गया। इसके प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र अबू धाबी, दुबई, फुजैरा, अल कयूम तथा रास अल खैमा हैं। क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन में ईरान 1970 में पहले तथा 1979 में दूसरे स्थान से 1981 में चौथे स्थान पर आ गया। 1970 के 19.13 करोड़ टन से 1979 में इसका उत्पादन लगभग 16 करोड़ टन हो गया। 1981 में यह केवल 6.92 करोड़ टन रह गया। 1978 में ईरान का संचित राशि का ज्ञात भंडार 8.1 अरब टन था, जो हिंद महासागरीय राज्यों में सऊदी अरब तथा कुवैत के बाद तीसरे स्थान पर है। ईरान के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मस्जिदे सुलेमान, गाचसरन, आगाजरी, हफ्तकेल, नफ्त सफद, नफ्ते शाह, खानक्विन, लाली गुलखरी, मारून, अलबोर्ज, अहवाज तथा सराजे हैं। अबादान तथा करमन शाह पेट्रोलियम शोधक केंद्र हैं। कतार, ओमान तथा बहरीन की पेट्रोलियम संचित राशि 55,034 तथा 3.4 करोड़ टन अनुमानित की गई हैं। इनका उत्पादन 1981 में क्रमशः 1.95, 1.36 तथा 0.2 करोड़ टन था। पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र दुखन, कतार, बहरीन तथा फोर्थ बे बहरीन हैं। बहरीन यहाँ की प्रमुख तेल शोधक शाला है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम की 5 पाइपलाइनें स्थित हैं। पहला किरकुक तथा नफ्तखाना इराक से भूमध्य सागरीय तट पर लेबनान के बंदरगाह त्रिपोली तथा सीरिया के बंदरगाह बनियास को, दूसरा धाहरन सऊदी अरब से बहरीन तथा सिदोन को तथा आइनेदार से रास तनूरा को, तीसरा दुखान से सईद कतार को, चौथा वाफरा ओमान, मीना अल अहमदी तथा मीना सईद को तथा पांचवा ईलात से हैफा इजराइल को, पेट्रोलियम का ज्ञात संचित भंडार मिस्र में 44 करोड़ टन तथा 1981 में उत्पादन 3.25 करोड़ टन था। ऑस्ट्रेलिया का पेट्रोलियम का वार्षिक उत्पादन लगभग 2 करोड़ टन 1981 के अनुसार का तथा ज्ञात संचित भंडार 1978 में 26.8 करोड़ टन का है। क्वींसलैंड का मूनी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत, भारत में पेट्रोलियम का कुल ज्ञात संचित भंडार 32 करोड़ टन 1978 में आंका गया। यहाँ के पेट्रोलियम क्षेत्र असम, गुजरात तथा पंजाब प्रांतों में वितरित हैं। असम के लखीमपुर क्षेत्र में डिगबोई में, माकूम के कुएं, नहर कटिया, मोरन, बप्पा पुंग, हंसन पुंग, हुगीर जंग, असम की सूरमा घाटी में बदरपुर, मसोमपुर तथा पथरिया क्षेत्र, गुजरात में खंबात की खाड़ी में लुनेज, अंकलेश्वर और कलोल क्षेत्र तथा पंजाब में ज्वालामुखी तथा होशियारपुर क्षेत्रों में पेट्रोलियम कूपों से पेट्रोलियम निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश व बिहार के तराई क्षेत्र में, कच्छ व कोरोमंडल तट के तटवर्ती भागों में तथा पश्चिमी बंगाल में पेट्रोलियम प्राप्त होने की आशा है। सागर तली के नीचे अवस्थित खनिज। सागर तली के नीचे चट्टानों की सिराओं में पाए जाने वाले ठोस खनिज लोहा, कोयला आदि सन 1620 से ही सागरीय जल के ऊपर के भूखंडों पर सुरंग खोदकर निकाले जा रहे हैं। इनकी लंबाई अब तक 15 मील की रही है, जिसे अब 30 मील तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटेन तथा जापान इस प्रकार खनिज निकालने में सबसे आगे हैं। हिंद महासागर में इस प्रकार के खनिज उपलब्ध करने का प्रयास नगण्य रहा है। इसके अतिरिक्त सागर के गर्भ में बहुमूल्य पत्थर, मूंगे तथा मोती भी निकाले जाते हैं। कई तरह के स्पंज, शंख, सीप, कौड़ियाँ भी सागरों से प्राप्त होती हैं, जिनके विविध उपयोग हैं।